प्रणमामि हरि प्रिय वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सब बहुत आनंदित लग रहे हैं आज। तो आज एक विशेष जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भगवान कृष्ण का जो वर्णन करते हैं तो कहा जाता है कि कृष्ण षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ऐश्वर्यश समाग्रश वीर्यश यशश श्रिया। तो भगवान के पास तो भगवान उसे कहा जाता है जिनके पास छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं। तो वो सारे ऐश्वर्य हमें इस संसार में आकर्षित करते हैं किसी ना किसी प्रकार से, और हम वास्तव में कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो भगवान में वो सारे जो ऐश्वर्य हैं वो परिपूर्ण मात्रा में हैं, इसलिए भगवान सर्व आकर्षक महसूस होते हैं किसी भी जीव के लिए। लेकिन वो छह ऐश्वर्य जो है उनमें से थोड़ा भी एक ऐश्वर्य किसी जीव के अंदर आता है तो वो व्यक्ति भी क्या लगने लगता है, हमें आकर्षक लगने लगता है। लगता है कि नहीं आया ना? तो जो पीछे थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा क्लोज हो जाइए आप, तो थोड़ा समय लूंगा मैं आपका। कितने बजे क्लास खत्म होता है? 7 बजे, आधा घंटा, 7:30, ठीक है। तो प्रयास करेंगे इस समझने का। तो ऐसे जो भगवान के जो ऐश्वर्य है उनमें से थोड़ा भी ऐश्वर्य उनमें से एक किसी जीव में आता है तो वो व्यक्ति वो जीव आकर्षक महसूस होता है, उसके प्रति हम आकृष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक भगवान का आकर्ष ऐश्वर्य है, कौन सा है? वैराग्य। हाँ, तो मैंने कल ही इस पर क्लास दिया था तो मुझे लगा यहाँ भी उसी को मैं रिपीट करो। तो एक ऐश्वर्य है भगवान का, कौन सा ऐश्वर्य है? वैराग्य। कौन कौन आकर्षित हो रहा है वैराग्य के प्रति? सब लोग। यदि वैराग्य ऐसा आकर्षण है, ऐसा गुण है कि जिसे देखकर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उस वैराग्य व्यक्ति के सामने क्या हो जाता है? नतमस्तक हो जाता है, झुकता है। वैदिक इतिहासों में हमने देखा है कि बड़े बड़े राजागण, बड़े बड़े विश्व के जो राजा हैं, सम्राट है, अधिपति हैं, वो भी ऋषि मुनि या महर्षिगण, देवर्षि ऐसे वैरागी लोगों के सामने क्या करते हैं? झुकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में इसका कई स्थानों में वर्णन आया है। ऐसे नहीं कि केवल भक्त लोग ही किसी के अंदर वैराग्य का भाव है उसके प्रति आकर्षित होता है, ऐसे नहीं। जनसाधारण व्यक्ति भी, सर्वसाधारण व्यक्ति भी आकर्षित होता है इस गुण को किसी के अंदर देखता है तो। भारत में देखो कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इतने पढ़े लिखे बैरिस्टर बने लंदन जाकर, भारत में आकर एक बिल्कुल भिखारी या फिर गरीब व्यक्ति की तरह रहते थे, और सारा भारत का जो सारे भारत के जो लोग हैं उनके प्रति आकृष्ट थे, उनको सम्मान आदि प्रदान करते थे, और उनका सरल जीवन था, सर्वसाधारण वस्त्र वो पहनते थे, और बल्कि इतना ही नहीं भारत के सबसे बड़ी उपाधि लोग देने के लिए उनको तत्पर थे, राष्ट्रपिता प्राइम मिनिस्टर का या फिर जो राष्ट्रपति का है। लेकिन ऐसे गांधी को इससे कुछ लेना देना पदवी से नहीं था, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सर्वसाधारण व्यक्ति भी किसी जीव में ये वैराग्य की भावना देखता है तो वो व्यक्ति उसके प्रति क्या होता है, आकृष्ट होता है और सम्मान की भाव व्यक्ति के हृदय में आ जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ग्रहण किया था। क्यों संन्यास ग्रहण किया था? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि ऐसा संन्यास ग्रहण में यदि करो तो जो सारे जीव हैं, जो लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, वो भी मुझे आदर और सम्मान प्रदान करें। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो उस समय वो बहुत बड़े विद्वान के रूप में कार्य कर रहे थे, बड़े विद्वान थे, विद्या विलास लीला कर रहे थे। एक दिन ऐसे चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम उस समय निमाई पंडित था, युवा थे, एक ऐसे रूम में बैठकर योग मुद्रा में वो जप करने लगे। कौन से नाम का जप करने लगे? गोपी 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 गोपी। अभी एक उस समय एक गोपी गोपी का उच्चारण कर रहे थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, वो वृंदावन की भावना में भावित हो गए थे और ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उनका स्मरण करते हुए अपने मुख से गोपी गोपी कह रहे थे। तो उस समय एक विद्यार्थी अंदर आता है वहां रूम में और वो कहते हैं, निमाय तुम्हें क्या हो गया, तुम गोपी गोपी चिल्ला रहे हो, कलयुग का धर्म है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे। कलयुग में तो व्यक्ति को हरे नाम लेना चाहिए, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, गोपी गोपी का उच्चारण कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे उन्होंने कृष्ण का नाम सुना, कृष्ण को गालियां देने लगे, कहते वो कृष्ण जो ब्रज के भक्तों को छोड़कर कहां चले गए, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, अब वृंदावन के भक्तों को इतने अधिक विरह की वेदना में ब्रज में छोड़कर वो चले गए, ऐसे व्यक्ति का नाम लेने के लिए आप कह रहे हो। तो ऐसे भगवान गोपियों के मूड में थे जिसके कारण भगवान को कृष्ण को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक लाठी वहां पड़े थी वो उठाई और वो जो विद्यार्थी उनको कह रहा था गोपी गोपी क्या चिल्ला रहे हो, कृष्ण कृष्ण कहो, उसके पीछे लगे लाठी लेकर मारने के लिए। वो बेचारा स्टूडेंट आगे दौड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे भाग रहे लाठी लेकर, वो अपना प्राण बचाते हुए इतना तेजी से दौड़ा कि आगे और एक विद्यार्थियों का बड़ा ग्रुप था जिनके पास चला गया और महाप्रभु दूर ही रुक गए। तो वो विद्यार्थियों ने पूछा, अरे तुम इतना तेजी से दौड़ते हुए कहां से आ रहे हो? इन्होंने कहा, वो जो निमाई पंडित है वो लाठी लेकर मेरे पीछे लगाए मारने के लिए। तो सारे विद्यार्थियों ने कहा, वो अपने आप को क्या समझता है, हाँ वो क्या राजा है यहाँ नवद्वीप का, बंगाल का, उसको हम सब मिलकर पिटाई करेंगे यदि फिर से ऐसी हरकत करेगा। तो ये किसने जाना? चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य अंतर्यामी के रूप में सारे जीवों के हृदय में विराजमान है। तो उन्होंने सोचा कि ये सारे जीव मुझसे इस प्रकार की ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, मेरा अनादर करेंगे, तो इन जीवों का कभी भी भला नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मैं इस संसार में कृष्ण नाम का वितरण करके कृष्ण प्रेम में सारे जगत को डुबाने के लिए आ गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ कुछ लोग कृष्ण प्रेम में डूब रहे हैं और कुछ लोग डूबना नहीं चाहते, वो भागे जा रहे हैं। तो उसमें से ऐसे स्टूडेंट्स थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने फिर क्या किया, उनको उन्होंने सोचा कि मैं संन्यास ग्रहण करता हूँ। तो महाप्रभु फिर संन्यास ग्रहण करते इसलिए सोचा कि जब सन्यासी बनूंगा तो ये लोग, सन्यासी को हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्या करता है, आदर और सम्मान देता है। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और ये जीव जो मेरा अनादर कर रहे हैं, मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो एक बार भी मुझे प्रणाम करेंगे तो इस भौतिक संसार के कष्टों से वो मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार की दया का भाव चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा और सन्यास ग्रहण किया, किसके लिए? दूसरों के हित के लिए। और वास्तव में किसी को सुख की अनुभूति करनी है तो हमें इस स्वार्थमय जीवन जीना त्याग देना चाहिए। और दूसरों के लिए यदि थोड़ा भी हम जीवित रहते हैं एक घंटे के लिए, तो आनंद महसूस करेंगे। हाँ, कितना आप संतुष्टि और आनंद अनुभव करते हैं, क्योंकि इस संसार में हम सुख तो चाहते हैं लेकिन स्वार्थमय वृत्ति से चाहते हैं, और हर चीज अपने लिए चाहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण किनकी प्रशंसा करते हैं? वृक्षों की प्रशंसा करते हैं कि देखो ये जो वृक्ष है उनका जीवन अपने लिए नहीं है, वो वृक्ष सदैव दूसरों के हित के लिए जीवित रहते हैं। हाँ, जिसके कारण भगवान कृष्ण बलराम को कहते हैं कि बलराम देखो व्यक्ति का जीवन इस वृक्षों के समान होना चाहिए जो सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। हाँ, ते भी एक प्रकार का महान वैराग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इस प्रकार से जीवन यापन किया और चैतन्य महाप्रभु फिर संन्यास ग्रहण करते हैं और सारे जगत के हित के लिए क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं पूरे भारत का, पूरे विश्व का। तो जनरली हम जब देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है, लाल कपड़े धारण कर दिए हैं, तो हमें क्या लगता है? हाँ, उनको हमारे हृदय में आदर का भाव आता है कि नहीं? हाँ, उनको व्यक्ति सम्मान देता है, आदर देता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जो वस्त्र है वो वैराग्य का वस्त्र है, तो उसको देखकर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ये समझ जाता है और उसके हृदय में आदर सम्मान की जो भावना है वो प्रकट होती है, चाहे उस व्यक्ति में वैराग्य का भाव हो या ना हो। ये भारत की सभ्यता है, हम भारत का एक कल्चर है। तो आज हम थोड़े समय के लिए समझेंगे कुछ ही मिनटों में कि ये वैराग्य है क्या, वैराग्य क्यों हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और वैराग्य की भावना कैसे हम अपने हृदय में और मन में ला सकते हैं। तो वैराग्य हर एक व्यक्ति के लिए है, ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो उसको वैराग्य आवश्यक नहीं है। वैराग्य का भावना कहां हमें उजागर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए? अपने हृदय में वैराग्य का भाव है वो विकसित करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति वैराग्य की भावना से जीवन यापन करता है तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक आनंदित होते थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के ऐसे एक भक्त थे जिनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम था? छह गोस्वामियों से हमें इस आंदोलन में आना है तो हमें इन छह गोस्वामियों के बारे में जरूर समझना चाहिए। हाँ, जिन्होंने वास्तव में ये वृंदावन जो देन है ये छह गोस्वामियों की है। हाँ, तो ऐसे छह गोस्वामियों से एक गोस्वामी थे जिनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कोई ऐसे गरीब घर के पुत्र नहीं थे। उस समय में पूरे बंगाल में सबसे रिच व्यक्ति कोई था, धनवान, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता थे गोवर्धन मुजुमदार। हाँ, और उनके चाचा थे हिरण्य मुजुमदार, और उनके एक लौते पुत्र थे रघुनाथ दास। ये रघुनाथ दास जब बहुत छोटे थे तो उनके घर में हरिदास ठाकुर आया करते थे, और हरिदास ठाकुर के संग के प्रभाव से उनका आकर्षण हुआ किसके प्रति? भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने के प्रति। और बचपन से ही हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते थे, और जैसे जैसे वो युवा हो गए तो आगे उनका हृदय इन भौतिक कार्यकलापों में नहीं लगता था। वो सदैव अपने घर को भी छोड़कर कहां दौड़ना चाहते थे? जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु की ओर, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कई बार वो घर से भाग के चले जाते थे, अमाप धन ऐश्वर्य सुविधाएं उनके पास थी लेकिन उनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार दौड़ के चले जाते थे, घर से भाग के चले जाते थे, तो उनकी माँ कहती थी उनके पिता को कि इसको आप लोहे की चेन से बांध के रखो घर में। तो उनके पिता कहते, अरे तुम्हें पता नहीं, ये ऑलरेडी बंधा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के लिए पागल हो गया है उसको इस संसार में कोई भी वस्तु बांध के नहीं रख सकती। उनके पिता कहते हैं इस संसार में व्यक्ति को दो चीजें बांध के रखती हैं, चाहे वो कितना ही बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो। हाँ, क्या है एक चीज? वो कहते हैं कि पहली चीज है धन है। हाँ, पैसा हर एक व्यक्ति को बांध के रखता है, इसलिए हम कहते ना चमड़ी जाए लेकिन दबड़ी ना जाए। अपनी चमड़ी निकालने के लिए तैयार है लेकिन एक दबड़ी नहीं निकल सकती। हाँ, जब आप मंदिर में भी जाते हैं तो चेक करते हैं सबसे जो मार्केट में नहीं चलती नोट, जो कोई लेने रहे हमसे, उसको हम निकाल के डोनेशन बॉक्स में डालने का प्रयास करते हैं। हाँ, बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना, इसलिए धन इतना प्रिय है व्यक्ति को कि सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए कहा रहती है जेब हमारे हार्ट। हाँ, हार्ट हार्ट के इधर रखते हैं ना, क्योंकि पैसे को हमने कहा रखा है हार्ट में रखा है, हार्ट में प्रिय वस्तु को रखा जाता है, इसलिए धन यहाँ रखते हैं हम। तो व्यक्ति को धन बांध के रखता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कितना धन था? इंद्र सम ऐश्वर्य। किसके समान ऐश्वर्य? इंद्र के समान। इंद्र भी देखते थे अरे ये पृथ्वी में रहने वाला रघुनाथ दास इतना ऐश्वर्यवान है। और दूसरी चीज हाँ बांधती है एक पुरुष को, वो है स्त्री, और स्त्री को कौन बांध देता है? एक पुरुष है, एक दूसरे का जो आकर्षण है। इसलिए उनके पिता कहते हैं इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम, कहते कि इनके पास इंद्र के समान ऐश्वर्य है और स्त्री कैसे इनकी अप्सरा के समान सुंदर है, ये दो चीजें भी इनको बांध के नहीं रख रही हैं। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ क्या करते हैं, अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, भागते हैं, भागकर जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं जहां चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको उनका स्वागत करते हैं जगन्नाथपुरी में, और उनको कहते हैं कि हे रघुनाथ जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करो मंदिर में जाकर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और दूसरे दिन से अपने उधर निर्वाह के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते कि मुझे कहां भोजन मिलेगा, कहां मैं रहूंगा, लेकिन एक चीज थी वो निरंतर हरि नाम का कीर्तन करते थे। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर का जो मेन गेट है सिंहद्वार जिसे कहते हैं, उस गेट पर खड़े हो जाते थे अपने ऐसे हाथों को ऐसे फैलाते हुए, और जो भी मंदिर से बाहर पुजारी लोग आते थे उनको खाने के लिए भोजन देते थे, प्रसाद देते थे उनके हाथ में, और उस पर अपना उधर निर्वाह करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक को पूछते हैं ये रघुनाथ सारी चीजें त्याग कर आया है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की सेवा करने के लिए रुका है, वो आजकल क्या कर रहा है, कैसे रहता है मुझे बताओ। तो महाप्रभु चैतन्य के जो सेवक थे जिनका नाम था गोविंद, उन्होंने कहा कि वो आजकल मंदिर के गेट के बाहर खड़े रहते हैं, जो भी लोग और पुजारी आते हैं उनको प्रसाद देते हैं, उसी पर ही अपना गुजारा करते हैं। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए, महाप्रभु ने कहा अच्छा है। फिर ऐसे कुछ दिन बीते तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर से पूछा वो रघुनाथ क्या कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक कहते हैं कि उन्होंने अभी वहां खड़ा रहना भी छोड़ दिया, अभी वो कहां चले गए जहां लंगर भंडारा होता है, प्रसाद बढ़ता है, उस स्थान में चले गए हैं, वहां जाकर जो भी थोड़ा सा भंडारे में बढ़ता है प्रसाद वो लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और दिन भर क्या करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया। हाँ, क्योंकि जब वो मंदिर के बाहर खड़ा रहता है तो यही सोचता रहता है कि कौन व्यक्ति आएगा और मुझे देता रहेगा प्रसाद और धन आदि, भगवान का कहा उसे स्मरण होगा, केवल एक ही चीज की चिंता रहेगी कि कैसे मैं अपना भोजन प्राप्त करूं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जब सोचते हैं और पूछते हैं, फिर और कुछ दिन बीतने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक को पूछते हैं कि जो रघुनाथ दास है वो क्या कर रहा है, अभी कुछ महीने बीते थे। तो उनके सेवक कहते हैं कि अभी वो ना मंदिर के गेट पे खड़े रहते हैं, ना लंगर का भोजन प्राप्त करते हैं, जगन्नाथ जी का जो राइस प्रसाद है जो बिल्कुल सड़ जाता है, गाय भी नहीं खाते, वो जब फेंका जाता है उसको ले लेते हैं वो, और उसको सुखाते हैं, उसमें थोड़ा नमक डाल के वो खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते ऐसा वैराग्य, जिस व्यक्ति के पास कितना ऐश्वर्य था, इंद्र समान, वो व्यक्ति जो बिल्कुल सड़ा हुआ चावल प्रसाद भी है उसको ग्रहण कर रहा है, लेकिन एक चीज निरंतर उनके जीवन में थी, वो क्या थे? कीर्तनिया सदा हरे। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये वैराग्य की भावना उनके अंदर आए या बनी रही, क्यों? क्योंकि वो निरंतर नाम संकीर्तन करते थे, भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। इसलिए ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जब महाप्रभु चैतन्य ने सुना कि वो तो ऐसा राइस खा रहा है जो फेंका गया है, तो महाप्रभु कहते अच्छा वो तो अकेले खा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन उनके घर जाते हैं, उनके झोपड़ी में जाते हैं, और वहां रघुनाथ दास गोस्वामी खा रहे थे, उनको पूछा तुम अकेले अकेले इसे ग्रहण कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ से छीन लिया, छीन के चैतन्य महाप्रभु और राइस खा रहे थे तो महाप्रभु नाचने लगे, आनंदित हो गए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे जीवन में मैंने आज तक इतना सुस्वादु प्रसाद नहीं खाया, क्या ऐसी चीज चैतन्य महाप्रभु को अच्छी लगी थी? वास्तव में वो राइस नहीं, एक चीज क्या, कि जो वैराग्य की भावना है रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में, उसको वो आस्वादन कर रहे थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए वैराग्य तो कई प्रकार का है, तो वैराग्य जो प्रमुख वैराग्य है जिसका वर्णन हमारे आचार्यगण करते हैं, जिसको कहा जाता है असली वैराग्य या युक्त वैराग्य, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तस्य विषयान् यतारहम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। एग्जैक्टली वैराग्य क्या चीज है? वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान्, मतलब हमारे सामने विषयों को भोगने की सुविधा दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है कि हमारे सामने विषय बहुत सारे हैं जिनको हम अपने पांच इंद्रियों से क्या कर सकते हैं, भोग सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सामने उन विषयों को होते हुए भी उनसे क्या रहता है? अनासक्त रहता है, डिटैच्ड। वो है वैराग्य, अनासक्तस्य विषयान्। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, उसमें एक चीज होनी चाहिए, क्या है? कृष्ण संबंधे। जब व्यक्ति उसके पास विषय भोग करने के लिए है लेकिन वो उसमें रुचि नहीं लेता और उन चीजों को या इस सारे जगत की हर वस्तु को किससे संबंधित देखता है? कृष्ण से संबंधित देखता है, और कृष्ण के संबंधित सारे वस्तुओं को देखते हुए वो क्या करता है? उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में उनके उपयोग के अनुसार लगाता है, उसी को कहते हैं वैराग्य। किसको वैराग्य कहते हैं? विषय सामने होते हुए भी उनमें आसक्त नहीं है, और उन सारे विषय या सारे जगत के वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखता है और उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग के अनुसार नियुक्त करता है, उसे वैराग्य कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति निर्बंध है, मतलब कभी भी इस जगत के बंधन से बंधता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे हमारे पास टाइपराइटर है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में, ये वैराग्य है। प्रभुपाद कहते हमारे पास बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन वो किसकी सेवा में लगा रहे हैं? कृष्ण की सेवा में, वो होकर भी उनके प्रति आसक्त नहीं है, लेकिन उस वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखकर उनको किसकी सेवा में लगाना? कृष्ण की सेवा में। इसलिए प्रभुपाद को एक बार पूछा, स्वामी जी आप तो बिल्कुल जेट विमान से इतना दूर दूर तक हम भागते रहते हो, तेजी से क्यों? प्रभुपाद कहते क्या करें, मैं पैदल यदि जाऊंगा विदेश तो कई जीवन बीतेंगे, इसलिए भौतिकवादियों ने इतनी बड़ी सुविधा की है उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्लाइट्स का तेजी से पहुंच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सारा जगत तेजी से नरक में जा रहा है और मैं यदि तेजी से नहीं पहुंचूंगा तो उनको पकड़ नहीं पाऊंगा, उनको नरक की स्थिति से बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे ये भौतिक सुविधाओं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हाँ, प्रभुपाद कुछ ऐसे वैराग्यों का उदाहरण देते थे। ये तो ये हो गया, ये कौन सा वैराग्य है? युक्त वैराग्य, ये असली वैराग्य है। हाँ, दूसरा वैराग्य है जिसको कहते हैं फल्गु वैराग्य या फिर निम्न श्रेणी का वैराग्य है, उसको रूप गोस्वामी कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना, कि जो व्यक्ति है हरि से संबंधित वस्तुओं को कैसे देखता है, ये संसारिक है, भौतिक है, इनको क्या करता है, वो त्याग देता है भौतिक या संसारिक समझकर। मुमुक्षुवो परित्यागे वैराग्यं फल्गु कथ्यते। अभी इस व्यक्ति में एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? कि ये व्यक्ति क्या करता है, त्याग तो देता है लेकिन उसको क्या नहीं करता, कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल नहीं करता, तो ये निम्न श्रेणी का वैराग्य है। ऐसा वैराग्य ज्यादा टिकता नहीं है, तो इसलिए ऐसे वैराग्य को कहा गया है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब कोई भी जो चीज है उसकी उपयोगिता या उसकी जो उपयोग है वो न समझकर उसको त्याग देना, उसको फल्गु वैराग्य कहा गया है। हाँ, जैसे ऐसे वैरागी होते हैं, वो कहते पैसे को नहीं छुएंगे हम, कुछ ऐसे साधु भी होते हैं वो धन को स्पर्श नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं मैं ऐसे हाथ ऐसे करके खड़ा रहूंगा, जगत का सारा धन मेरे पास लेके आओ। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं मैं उसको ले लूंगा और किसकी सेवा में लगाऊंगा, कृष्ण की सेवा में, उनके लिए बड़े बड़े मंदिर बनाऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे कुछ होते हैं जो लोग जिनको फल्गु वैराग्य कहा जाता है, जिसे निम्न श्रेणी का वैराग्य कहते हैं। हाँ, जिसमें प्रभुपाद उदाहरण देते थे। हाँ, कि एक होता है फल्गु वैराग्य के लिए प्रभुपाद कहते थे भारत में एक नदी है जिसका नाम क्या है, फल्गु नदी। वो फल्गु नदी ऐसी नदी है कि ऊपर से आप देखोगे तो पूरा सैंड ही सैंड है, मिट्टी है, लगेगा कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन जैसे सैंड को थोड़ा हटाओ और हाथ डाल दो उसमें क्या है, पानी है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे वैरागी हैं फल्गु झूठे या दाभी जो ऊपर रूप से वैराग्य का शो कर रहे हैं लेकिन हृदय में क्या है, इस संसार को भोगने की बहुत बड़ी लालसा है, बहुत बड़ी भावना है, इस जगत को एंजॉय करने की क्या है, भावना या अभिलाषा है। तो ये फल्गु वैराग्य है जिसको प्रभुपाद और भी डिस्क्राइब करते हैं, कहते कि और कई प्रकार के वैराग्य हैं इस जगत में। एक वैराग्य है मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य? मरकट वैराग्य। मरकट का मतलब होता है बंदर या मंकी। तो जो मंकी है या जो बंदर है वो बाहरी रूप से लगता है कि कितना वैरागी है, कोई वस्त्र धारण नहीं करता, बिल्कुल नागा बाबा की तरह है, कुंभ मेला में हम देखते हैं, या फिर ऐसा बंदर जो कभी घर भी नहीं बनाता। हाँ, जो हमेशा जब बारिश आता है, हम जब स्कूल में थे तो एक क्लास में एक चैप्टर था, थर्ड तीसरी क्लास में जब थे, उसमें था कि जो बंदर है वो कितना विरक्त है, वो कभी घर नहीं बनाता और जब भी बारिश का मौसम आता है, बारिश शुरू हो जाता है तो भीगता है, तो बंदर सोचते हैं अरे अगले बारिश आने से पहले मैं क्या बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, थोड़ा सा विचार आता है, बारिश खत्म हो जाता है फिर से भूल जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा ये बंदर ना कोई वस्तुओं को स्टोर करता है, थोड़ा बहुत भोजन यहाँ स्टोर करता है खाते समय, बहुत तेजी से खाता है, और कोई वस्त्र नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है, बाहरी रूप से तो तूफान वैराग्य उसके अंदर है लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उसकी एक वीकनेस है, अपने भोग के लिए साथ क्या रखता है, 3 डजन बंदरिया रखता है। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं 3 डजन बंदरिया रखता है, उनके साथ सुखोपभोग भौतिक भोग करता है, लेकिन बाहरी रूप से क्या लगता है, वो महान विरक्त है। इस प्रकार का ये वैराग्य फलगु है। हाँ, और दूसरे कुछ वैराग्य हैं जिसको कहते हैं कारण वैराग्य। कारण का मतलब है जीवन में कुछ ऐसा कारण घटित होता है, कुछ घटना कि हमें लगता है अभी थोड़ा वैरागी हो जाना चाहिए। घर में कुछ हो गया, नहीं अभी संडे प्रोग्राम में रेगुलर जाऊंगा, और परेशानियां चल रही है ना, माला बढ़ा देता हूं। तो ये कारण मतलब तो कुछ घटना हो गई, वैराग्य का भाव अंदर आ गया। हाँ, जैसे स्मशान वैराग्य, कारण वैराग्य का एक भाग है स्मशान वैराग्य। जब हम स्मशान में है किसी का अंतिम यात्रा करने जाते हैं, हर एक व्यक्ति यात्रा में निकलता है। आप किसी यात्रा में जाओ या ना जाओ, लेकिन एक यात्रा में आपको जाना पड़ेगा। वो कौन सी यात्रा है? मायापुर यात्रा नहीं, जगन्नाथपुरी की नहीं, कौन सी? अंतिम यात्रा। एक तो खुद की भी निकलेगी और दूसरे की यात्रा में भी भाग लेना पड़ेगा। तो ऐसा एक स्मशान वैराग्य, जब किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहां स्मशान में हम देखते हैं कि अरे देखो इतना बड़ा व्यक्ति, धन संपदा, पुत्र परिजन, मान सम्मान सब कुछ होने के बावजूद भी अभी देखो, हाँ थोड़ी सी जितनी सोने के लिए घर में तो बेड बड़ा होता है, लेकिन वहां बेड का साइज छोटा हो जाता है, इतना छोटा जिसमें थोड़ी बहुत लकड़ियां यूज करते हैं। व्यक्ति सोचते कि क्या ये जीवन है, पूरा अपना कोई मित्र साथ में बैठे तो उसके साथ बहुत दुख वेदना वैराग्य की बातें करता है कूद कूद कर, हाँ जो कभी इतना सोचा नहीं, इतना सोचता रहता है और इतना बोलता है कि जैसे बड़ा प्रवचन देने वाला प्रवक्ता हो। हाँ, वो बोलता रहता है कि देखो क्या ये जगत है, क्या ये जीवन है, क्या हम लाए और क्या लेके जाएंगे, और ऐसी बहुत बातें करते रहता है, बातें करता रहता है। ऐसे लगेगा कि अभी सारे संसार को त्यागने वाला है। और जैसे उस स्मशान भूमि से बाहर आता है, जेब में हाथ डाल के अपने बड़ी गाड़ी का वो निकालता है चाबी, और गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठ जाता है, अपना म्यूजिक ऑन करता है, सारा वैराग्य गायब हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। ये थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है। ऐसे वैराग्य कहते हैं प्रसव वैराग्य। प्रसव का मतलब है जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो इतनी वेदना होती है उसे, मृत्यु के समान वेदना है, शास्त्र कहते हैं। जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो वो कहती है नहीं नहीं, अगली बार मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, उसको शास्त्र कहते हैं प्रसव वैराग्य। और फिर बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरी बार फिर से बच्चे के लिए तैयारी करती है। हाँ, तो भूल जाती है। स्मशान वैराग्य, प्रसव वैराग्य, और ऐसी कई सारी घटना है हमारे जीवन में कि कोई कारण घटित हो जाए तो हमारे अंदर वैराग्य का भाव आता है, लेकिन उसकी वीकनेस क्या है, वो भाव टिकता नहीं है। तो इसलिए ये जो वैराग्य है जिसको शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जो फल्गु वैराग्य है वो किसी काम का नहीं है, ऐसा जो मरकट वैराग्य है। तो श्रेष्ठ वैराग्य क्या है जिसको मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, हाँ क्या है वो? अनासक्तस्य विषयान् यतारह उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। विषय से अनासक्त। तो ये जो वैराग्य है इसको भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है। प्रभुपाद कहते हैं वैराग्य क्या है कि इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए इंद्रियों की तृप्ति हेतु कार्य करने को रोकना और भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य बढ़ाना, इसी को क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। अभी हम देर रात क्यों सोच रहे हैं अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए? गीता में भगवान 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य। वैराग्य क्या है? इंद्रियों के जो अर्थ है उनसे विरक्त हो जाना। इंद्रियों के अर्थ क्या है? रूप, रस, गंध, स्वाद, स्पर्श। हम पांच इंद्रियों के पांच ही अर्थ है। हम स्पर्श करने के लिए लालायित होते हैं, जीवा से स्वाद लेने के लिए पागल हो जाते हैं, सूंघने के लिए, देखने के लिए, हाँ सुनने के लिए। तो ये इंद्रियों के ये अर्थ है, विषय है। तो इंद्रियों के अर्थों से विरक्त हो जाना उसको कृष्णा भगवत गीता में क्या कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। तो ये तो हर एक को आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों के विषयों में व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो उसकी उसका मृत्यु या उसका पतन क्या है, निश्चित है। इसलिए असली वैराग्य यह है कि ऐसे इंद्रिय उपभोगों से हम क्या हो जाए, अनासक्त हो जाए। हम जैसे श्रील प्रभुपाद भी वर्णन करते हैं ऐसे जो श्रेष्ठ वैराग्य का, प्रभुपाद प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने पिता के पास जाते हैं जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे गुरुकुल में, और उनके पिता ने उनको इनवाइट किया और बुलाया, और पिता ने पूछा बालक प्रहलाद, ये बेटा प्रहलाद, पता हो इतने दिन से गुरुकुल में थे, क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद कहते हैं, हित्वात्म पातम ग्रह अंतर गोपम, पहले गोली मार दी पिता को। क्या बोला? हित्वात्म पातम ग्रह अंतर गोपम वनम गतो यत हरिम आश्रयत, कि ये जो तुम ग्रह वेदिक का जीवन जी रहे हो ना पिताश्री, ये अंधे कुएं के समान है, इससे बाहर निकलो। और कहां चले जाओ? जंगल में चले जाओ। अभी बेटा बोल रहा है पिता को। हाँ, वैसे भी एक आयु आती है हमारे जीवन में जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, 50 साल के हो जाए तो कहां प्रस्थान करना है? अब एयरपोर्ट में जाते हैं ना, लिखा होता है आगमन प्रस्थान। अभी जन्म लिया तो इस जगत में हमारा आगमन हो गया है। हाँ, फिर हम अलग अलग आश्रमों में जाते हैं, लेकिन एक दिन हमारा क्या होने वाला है इस संसार से, क्या होने वाला है? प्रस्थान। हाँ, तो यहां प्रहलाद कहते अपने पिता को कि आप वन में चले जाओ, लेकिन कोई कह सकता है, प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में कि चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी वन में चला जाए तो वो वैराग्य नहीं कहलाएगा। वन में जाना ही विरक्त जीवन के लिए काफी नहीं है, उससे श्रेष्ठ एक वस्तु है उसको पकड़ना, वो परफेक्ट वैराग्य है। और वो क्या है? प्रहलाद कहते हैं वनम गतो यत हरिम आश्रयेत, वन में जाकर भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करना, इसे ही क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ वैराग्य कहा गया है। हम विरक्त हो जाए लेकिन हरि का आश्रय नहीं ग्रहण किया तो वो वैराग्य नहीं है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ वैराग्य क्या है कि भगवान हरे या कृष्ण का हमें क्या करना, आश्रय स्वीकार करना। हाँ, तो हमने ये समझा कि वैराग्य है चीज क्या, तो अब हम जानेंगे कि वैराग्य क्यों हमें धारण करना चाहिए अपने जीवन में। और वैसे भी वैराग्य बड़ा हेल्दी है कि नहीं? यदि हमें हम कुछ स्वादिष्ट व्यंजन सामने रखे तो हम जिह्वा का गुलाम होकर कितना खाएंगे, हाँ, फिर पूरे रात नींद नहीं आएगी, है ना, फिर डॉक्टर्स को फोन करने पड़ेंगे, मेडिसिन लेने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा वैराग्य ला देते हैं, जितना आवश्यक है उतना खा लेते हैं, तो उसको योग्य वैराग्य कहा गया है। तो वैराग्य क्यों हमें लाना चाहिए, तो सबसे पहली चीज है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। जहां देखिए प्रीत आना गौर भगवान, कृष्णदास कविराज कहते हैं जिसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित हो जाते हैं। फलुक वैराग्य नहीं, कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य, जिसको देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। और उसी को ही माता देवभूति अपने पति कर्दम मुनि को कहती है श्रीमद् भागवतम में। वो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक कार्य कर रहा है और वो धार्मिक कार्य करते करते उसके हृदय में वैराग्य का भाव नहीं आ रहा है तो वो धार्मिक कार्य क्या है? यूजलेस है, व्यर्थ है। हाँ चलो ठीक है, किसी ने धार्मिक कार्य किए उससे उसके हृदय में वैराग्य का भाव आया, चलो वैराग्य का भाव आया, लेकिन वैराग्य का भाव आने के बावजूद भी यदि न तीर्थ पाद सेवाएं, वैराग्य का भाव आकर यदि कृष्ण की सेवा करने में उसका अनुराग नहीं बढ़ रहा है तो ऐसा वैराग्य भी किसी काम का नहीं है, वो भी फल्गु वैराग्य है। इसलिए वो कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो व्यक्ति जीवित होकर भी क्या है, मृत है, मरे हुए व्यक्ति के समान है। हाँ, तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वैराग्य क्यों चाहिए हमें अपने जीवन में। 15वें अध्याय के एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं असंग शस्त्रेना दृढ़ेन चित्वा, कहते हैं कि ये जो वैराग्य एक शस्त्र के समान है, धार धार तलवार या पैनी तलवार के समान है। हाँ, जो आसक्ति संसार से हमें बहुत है, हाँ जिसको छोड़ना बहुत कठिन है। जैसे एक बार ये आसक्ति बड़ी विचित्र चीज है, इसलिए मैं कल पढ़ रहा था जिसमें वर्णन आ रहा था कि एक बार एक व्यक्ति जिसके घर में गाय थी, वो गाय को उसको कहाँ जाना था अपने परिवार के साथ, तो सोचा भी गाय को कहाँ छोड़ के जाऊं, पड़ोसी के घर में गाय को छोड़ के गया। गाय बहुत सारा दूध देते थे, गाय को उनके घर छोड़ गया और चला गया। अभी गाय रोज जो पड़ोसी व्यक्ति है गाय की थोड़ी सेवा कर रहा था, दूध निकाल रहा था, लेकिन दूध अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, कुत्ता जो था घर में उसको पिला रहा था। हाँ, कुत्ता मौज में से दूध पी रहा है गाय का। आजकल शहर में मनुष्य को नहीं मिलता शुद्ध गाय का दूध। अभी उसकी पत्नी जो घर में थी वो कहती कुत्ते को पिला रहा है लेकिन मुझे नहीं दे रहा है। हाँ, तो अभी कुछ महीने बीत गए तो वो जो गाय का स्वामी है ओनर या मालक वापस आ जाता है। वापस आकर वो अपने गाय उनको थैंक यू करता है कि धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ, आपने गाय की सेवा की, संभाली, उसको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, तभी मैं ले जाता हूँ गाय को। तो वो लेके जा ही रहा था घर से, तो उस समय कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था? कुत्ता। तो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, या पत्नी परेशान हो गई, वो कहते क्या ये कुत्ता इतना जोर जोर से भौंक रहा है, गाय जा रही है। कहते दूध का प्रभाव है, तुम्हें भी पिला था ना तुम भी ऐसी भौंकती जैसे कुत्ता भौंक रहा है, क्योंकि वो आसक्त हो गया है, उसको पता है अभी दूध फिर से नहीं मिलने वाला। तो अटैचमेंट ऐसी चीज है। हाँ, तो ये आसक्ति बड़ी प्रभावशाली है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ये वैराग्य रूपी जो शस्त्र है, तलवार है, वो ऐसे अटैचमेंट को क्या करता है, काटने में सहायता करता है। असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता से उसको छेदन कर देता है व्यक्ति, काट देता है। तो प्रभुपाद उस गीता के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें दो चीजें जीवन में काटनी है। हम वह तलवार के उपमा देते, क्या है वो दो चीजें? एक है कि हमारे हृदय में विषयों को भोगने की बड़ी आसक्ति है। लोग होते हैं ना चाय से कितना आसक्त होते हैं, चाय ना मिले तो सुबह सुबह खूंखार प्राणी की तरह गर्जना करते घर में। हाँ, सुनाई करें आपने उनकी गर्जना। तो क्यों? अटैचमेंट चाय से, चाय नहीं छूटती। संसार में क्या व्यक्ति इतने आसक्त हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को शास्त्र कहते हैं साल में दो बार अपने परिवार को लेकर तीर्थ भ्रमण के लिए जाना चाहिए। कितनी बार? निकलो घर से बाहर, तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाओ। शास्त्र महाभारत कहता है, गृहस्थ के आचरण का वर्णन आता है जो पढ़ रहा था, उसमें कहते कि सुखी गृहस्थ कौन है या सफल गृहस्थ कौन है, जो व्यक्ति अपने दिन को तीन भागों में बांटता है। मैं कई बार बोला हूं, सुबह का समय इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, पर्सनल बिल्कुल प्रगाढ़ गहरी आध्यात्मिक अभ्यास करना, साधना खुद, और दिन में उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, परिवार आदि का पालन पोषण करना है, उसे धन अर्जन करना चाहिए। दिन में क्या करना? हाँ, टीवी ऑन करके नहीं बैठना, बाहर निकलना, धन अर्जन करना परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और शाम का समय परिवार के लिए देना, पत्नी बच्चे रिलेटिव्स उनको भी प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए उनके साथ समय बिताना। ऐसा कोई गृहस्थ व्यक्ति समय बिताता है तो महाभारत कहता है वो सुखी गृहस्थ है, सुखी व्यक्ति है। अभी कहा रहा वो सुख, सुबह उठते ही धनम, दोपहर को भी धनम, सोने से पहले भी धनम, बाकी पता ही नहीं है। हाँ, परिवार सब बहुत मुश्किल है। तो वहां ये वर्णन आता है एक ग्रस्त व्यक्ति के बारे में कि उसे इस प्रकार से निवास करना चाहिए। तो पहली चीज भगवद गीता में कहते हैं कि विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसको हमें छेदन करना चाहिए, और जिसके लिए हमें वैराग्य की आवश्यकता है। और दूसरी चीज श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस संसार में हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, प्रभुत्व जताना चाहते हैं लोगों के ऊपर या समाज के ऊपर। हाँ, वो भावना, वो आसक्ति काटने के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छिद्वा, इस प्रकार से हाँ वो आवश्यक है। तो ऐसा जो वैराग्य है जो बहुत ही यूजफुल है या आवश्यक है, जिसको भगवान गीता में कई स्थानों में वर्णन करते हैं। जब अर्जुन ने घुटने टेक दिए थे अपने, किसके सामने? कृष्ण के सामने नहीं, कृष्ण के सामने टिके घुटने टेक देंगे तो सफल हो जाएंगे। किसके सामने? अपने मन के सामने। हाँ, भगवान ने कहा अरे अर्जुन मन को लगाओ, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलव दृढ़, इतना हटीला पागल मन है, इतना चंचल है। वायुरिव दुष्करम, वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल करना मेरे लिए असंभव है। आपने घुटने टेक दिए वहां रणांगन में, तो भगवान कहते उठो। हाँ, तो कैसे उठने के लिए बोले भगवान? अभ्यास है न तू कमते या वैराग्य न चल रहे थे, अभ्यास करो और दूसरी चीज क्या करो? वैराग्य। तो मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान कहते हैं दो चीजें करो। अभ्यास क्या है? भक्ति में अनुकूल चीजों को स्वीकार करना। हाँ, मतलब केवल प्रसाद ही ग्रहण करना ये अनुकूल है, भक्तों का संग करना, म्यूजिक भौतिक नहीं सुनना, टेलीविजन देखना कि नहीं देखना? हाँ, नहीं देखना। हाँ, तो ये सब अनुकूल है। भक्तों का संग करना, शास्त्रों को पढ़ना, लेक्चर सुनना, कीर्तन सुनना, ये सब अनुकूल चीजें धारण करना। और दूसरी चीज क्या है? वैराग्य क्या है? कृष्ण उसमें कहते हैं जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको त्याग देना, असत संग का त्याग, टेलीविजन जो पूतना का दूसरा रूप है उसको डुबो देना। इस प्रकार से जो प्रतिकूल चीजें हैं उनका त्याग करना चाहिए और अनुकूल चीजों को व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान ये कहते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं, अरे बहुत समय है, इतना जल्दी वैराग्य क्या हृदय में लाना है। हाँ, नहीं नहीं, फिर भगवान को योजना बनानी पड़ेगी। कई बार हम स्वयं स्टेप में उठाते हैं तो हमारे लिए कौन स्टेप उठाता है? कौन? कृष्ण। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है खुद ही स्टेप उठा ले, हाँ, स्वयं ही तैयार हो जाए। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि कल से फटे टूटे कपड़े पहनेंगे हम, हाँ, कार की बजाय साइकिल यूज करेंगे, साइकिल पे आएंगे, नहीं। हर चीज को कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना है, लेकिन उनसे आसक्त नहीं रहना है। जैसे कैशियर होता है, बैंक में कैशियर के पास कितना धन होता है? उतना धन किसी के पास नहीं है। वो काउंट करता रहता है, करता रहता है, उसको पक्का यहां हृदय में कंफर्म है ये धन मेरा किसका है? स्वामी का है। उसी प्रकार से इस संसार में हर वस्तु, मानस देह के हर जो किछु मोर, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे आप्त, मेरे पत्नी बच्चे, सब कुछ किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की। मैं टेक केयर करने वाला हूं, उस भावना से उसको संभालना चाहिए। हाँ, ये ब्राह्मण का गुण है। ब्राह्मण की क्वालिटी क्या है कि वो हर चीज कृष्ण की देखता है और उसको सही रूप से इस्तेमाल करता है, हाँ, उचित मात्रा में। तो उसी प्रकार से हमें इस भावना से रहना चाहिए। भक्तिवरण ठाकुर अपनी शरणागति बुक में लिखते हैं कि मैं तो ये सिक्योरिटी गार्ड हूँ कृष्णा, ये जो पत्नी है, बच्चे है, बिजनेस है, ये सब किसका है? आपका है, आपने मुझे वहां नियुक्त किया है। इस एटीट्यूड से उन्होंने पूरा एक सॉन्ग लिखा है भक्तिवरण ठाकुर ने। तो इस भावना से हमें रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम स्वयं ही ये भावना नहीं रहेंगे हृदय में और संसार के हर चीज के प्रति आसक्त रहेंगे तो हमारे लिए कठिन होगा। फिर कृष्ण हमारे लिए ऐसी योजना बनाएंगे कि फिर हम न चाहते हुए भी उसको छोड़ देंगे, त्यागेंगे। इसलिए परीक्षित महाराज को जब शाप मिला तो परीक्षित महाराज ने उसके पीछे किसका हाथ देखा? कृष्ण का। परीक्षित महाराज जब सब छोड़कर गंगा नदी के तट पर गए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत पापी व्यक्ति हूं, हाँ बल्कि पापी हूं, लेकिन कृष्ण की बहुत मेरे ऊपर कृपा हुई है। मेरा जो मन है ये गृहस्थी के कार्य में बहुत अधिक चिपका हुआ है, लगा हुआ है। कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई कि उस ब्राह्मण के शाप के द्वारा मेरे हृदय में वो वैराग्य का भाव ला दिया, जिसके कारण में उनके हम भक्ति में पूर्ण रूपेण नियुक्त हो गया। तो इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम क्या करें, उस भावना को स्वयं ही लाने का प्रयास करें, स्टेप उठाएं, अन्यथा फिर कृष्ण ऐसी योजना बनाते हैं। मैं हमेशा वो महाराज भर्तृहरि की कथा सुनाता हूँ। हाँ, एक उज्जैन जिसका नाम अवंती या मालवा प्रदेश था, वहां एक राजा थे भर्तृहरि, उनके छोटे भाई विक्रमादित्य हुआ करते थे। तो ये भर्तृहरि की कई सारी रानियां थी, लेकिन उनमें से एक रानी थी जिनका नाम क्या था? पिंगला। पिंगला से इतना प्रेम, इतने आसक्त और इतनी सुंदर थे, ऐसा वर्णन आता है कि स्वर्ग की अप्सराएं पिंगला के सौंदर्य को देखकर शर्मा जाते थे। और ये राजा इतना उनसे आसक्त हो गया कि इसको कुछ और दिखाई नहीं देता था। सब जगह कौन दिखाई दे रहे थे? अपनी पत्नी जो छोटी रानी है पिंगला। तो ऐसे इतने आसक्त हो गए वो राजा। उस राज्य में ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ धन आदि नहीं था। उन्होंने सोचा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है, चलो तपस्या करता हूँ, और तपस्या के द्वारा मैं क्या करूंगा, हाँ तपस्या के द्वारा कुछ वर प्राप्त कर सकता। तपस्या की उन्होंने लंबे समय के लिए, और तपस्या के बाद एक देवता प्रकट हो गए। देवता ने उनको फल दे दिया, ये फल आप खा लीजिए ब्राह्मण, आप हमेशा युवा रहेंगे, युवा ही नहीं बल्कि अमर हो जाएंगे, लंबी आयु हो जाएगी आपकी। ब्राह्मण जैसे आप खोला फल देखा, ब्राह्मण ने सोचा अरे ये तो बड़ा अद्भुत है। तो उनकी पत्नी साथ में बैठे थे, ब्राह्मणी ने कहा अरे पतिदेव आप क्या कर रहे हो, ये लंबी आयु प्राप्त करके किसका भला हुआ है? पहले से हमारे पास आयु थी जिसमें खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, गरीबी के कारण अपमानित होना पड़ रहा है, अभी लंबी आयु मिलेगी तो उसमें भी ये चीजें होगी, नहीं चाहिए हमें ऐसा फल। उस देवता को कोई अकल नहीं थी, उसने कुछ पैसे देने के बजाय फल ला के दे दिया। उस पत्नी ने कहा ब्राह्मण के कि जाओ आप ये फल जाकर किसको दे दो, महाराज भर्तृहरि को दे दो, वो बड़े उदार चित्त के राजा हैं, अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करते हैं, उनके पास जाइए उनको दीजिए, कुछ जगत का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, हित होगा। तो ये ब्राह्मण गया सरल हृदय का, राजा के सामने दोनों हाथों में फल पकड़ के ऐसे दे दिया। राजा को कहा महाराज हाँ आप ये फल को स्वीकार कीजिए, मेरे तो किसी काम का नहीं है, लेकिन आप इसको खाएंगे तो लंबी आयु हो जाएगी और युवा रहेंगे, जिसके द्वारा सारे प्रजाजनों का भला हो सकता है। राजा के हाथ में जैसे वो फल आया और ये उसके लाभ सुने तो सबसे पहले किसकी याद आई होगी, किसकी? जोर से पिंगला की। आसक्ति का ये प्रॉब्लम है, अटैचमेंट की समस्या क्या है, कोई भी वस्तु जो भी चीज हो वो पानी उधर ही बहेगा, कहते ना कुछ भी चीज हो तो जहां हमारी अटैचमेंट होती है सारे रिसोर्सेस वहां चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ सारे फोन कॉल्स कहां जाते हैं, उसी दिशा में जाते हैं। हाँ तो ये आसक्ति का ये प्रभाव है। तो इन्होंने सोचा अरे मैं अकेला अमर हो जाऊं, मैं अकेला युवा हो जाऊं, मेरी पिंगला वो तो बड़ी हो जाएगी, मैं मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो ऐसा राजा तुरंत उठता है, सभा बर्खास्त, और उस दिन वो फल लेके अपने रानी पिंगला के महल में जाता है और उनको वो देता है। रानी साहिबा जो बैठे थे उनको फल दे दिया उन्होंने और कहा इसके ऐसे ऐसे लाभ हैं। अभी रानी ने जैसे वो लाभ सुने तो उन्होंने कहा मैं तो अभी इसको ले सकती हूँ लेकिन ना ये बड़ा पवित्र है, अभी थोड़ा स्नान आदि करने दीजिए, नए वस्त्र धारण करने दीजिए, फिर आराम से इस फल को खाती हूँ। हाँ वो भी बड़ी चतुर थी, उसका भी जो आसक्ति हो किसी और बह रहा था, वो भी राज्य में जो घोड़े का पालन करने वाला दरोगा है उनसे उसको प्रेम हो गया था महारानी पिंगला को। अभी वो जो फल है उसने सोचा मैं फल क्यों खाऊं, फल किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, उस दरोगा जी को देना चाहिए। अभी वो दरोगा जी को फोन लगाया, एक ही सेकंड में दरोगा जी दौड़ते हुए पहुंच गए उसके दरवाजे पर। अब जैसे आ गए पिंगला जी ने वो फल दिखा दिया, पिंगला जी ने कहा इसके ये लाभ हैं। अभी उसने फल लिया, जैसे लाभ सुने उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही अद्भुत और पवित्र रोमांचकारी फल है, इसको ऐसे कैसे खा जा सकता है, गंगा स्नान कर लेता हूँ पहले जाकर फिर खाता हूँ। उसका साथ भी प्रॉब्लम था, उसकी भी आसक्ति कहाँ बह रही थी, दूसरी जगह एक उस राज्य में वेश्या थी उनसे इनको बड़ा प्रेम लगाओ, तभी उसको राजा रानी से कोई लेना देना नहीं है, रानी से धन संपत्ति आदि मिलती हैं जिसके कारण रानी का गुलाम था। फिर वो फल लेकर पहुंच गया किसके पास, उस वेश्या के पास, और वो वेश्या को दिया और कहा ये लाभ है। उन्होंने भी कहा मैं स्नान आदि करके फिर खाती हूँ। तो अभी वो वेश्या एक प्रकार से विद्वान और सरल हृदय की थी, उन्होंने सोचा मेरा जीवन तो घृणित है, पाप में से पापी कार्यों से भरा पड़ा है, और ये जो व्यक्ति जिसने मुझे फल दिया है वो भी स्वार्थी है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जब किसी पर उपकार करता है तो उसमें क्या छुपा रहता है, स्वार्थ छुपा रहता है वास्तव में। तो वो सोचती है कि क्या मेरा जीवन है, कि राजा देखो उसको राजा से वन साइडेड लव, क्या कहते हैं उसको, एक तरफा प्रीति अब वो हो गई थी, कि राजा सारे समाज की सेवा में लगा है, जन कल्याण में अपना जीवन लगा दिया, इतना तपस्वी है। तो उस रानी ने सोचा, वेश्या ने सोचा ये फल किसको ले, किसके पास ले जाऊंगे, किसके पास, राजा के पास। दरबार में चलती हुई गई, राजा बैठे थे सिंहासन पर आरूढ़ थे, सारे अपने प्रजाजन मंत्रीगणों के समक्ष ये गई स्त्री और उन्होंने फल अर्पित किया कि महाराज ये फल आपके लिए है। और जैसे उसने फल और उसके गुण सुने हाँ उसका कलर उतर गया, किसका, फल का कि राजा का, राजा का कलर उतर गया, फीका पड़ गया। हाँ अभी उसको आकाश में तारे जब कोई ऐसी घटनाएं होती है तो आप सोचते ना कि तारे भी नहीं कहीं दिखाई देते, तो ऐसी स्थिति हो गई थी उसके। फिर राजा को जितने सारी घटना थी सब समझ में आ गया, राजा के हृदय में वैराग्य आ गया। हाँ ऐसी स्थिति है, यदि हम कदम उठाएं तो ग्लोरियस है, नहीं तो किसको कदम उठाना पड़ता है, कृष्ण को। और कृष्ण जब कदम उठाते हैं तो बहुत भारी लगता है हमें, तो बेटर है बुद्धिमान व्यक्ति आप पहले से शास्त्रों के वाणी को, संतों के वचन को सुन के कदम उठाकर आगे बढ़ो सरलता से। तो ये राजा ने जैसे ही समझो ये फल तो एक ही था, कहा ये पूरा भ्रमण देश विदेश का भ्रमण करके कहा पहुंचा है मेरे पास, समझ में आ गया पिंगला दरोगा वेश्या महाराज भरद्वारी ये पूरा सर्कल था। फिर उन्होंने 3 शतक लिखे थे अपने रानी से, जब इतना वो लगाव था उनको तो उन्होंने 100 श्लोक की रचना की, श्रृंगार शतक, ऐसे ऐसे श्रृंगार में श्लोकों की रचना। फिर अभी उससे पहले जब राजा अच्छे से कार्य करते थे तो उन्होंने नीति शतक लिखा था 100 श्लोक। और फिर अभी जैसे ये घटना हुई उसी समय 1 श्लोक उनके मुख से निकल पड़ा, वो चिल्लाने लगे, वो कहने लगे, उस श्लोक में वो लिखते हैं या चिंतयामि सततम् मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम् सजनोऽन्यसक्तः अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या देखताम च देखताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। वो कहते हैं या चिंतयामि सततम् मयि सा विरक्ता, जिसका मैं चिंतन करता था वो मुझसे विरक्त थी। आगे कहते हैं साप्य अन्यम इच्छन्ति, वो भी किसी और की इच्छा कर रही थी। जनम स जनान्य आसक्त, और वो भी किसी और से आसक्त था। वो कहते हैं अस्मत् कृते परिशुष्यति काचित् अन्या। तो ऐसी घटना जब उन्होंने श्लोक के माध्यम से वर्णन की तो भरतवारी बहुत वैराग्य हृदय में ऐसे आ गया। उन्होंने कहा धिक्कार हो मेरे जो प्रिय पत्नी पिंगला का, धिक्कार हो उस दरोगा का भी, धिक्कार हो उस वेश्या का भी, धिक्कार हो और मेरा भी धिक्कार हो। और ये सारा जाल रचने वाला कौन है? कामदेव। कौन? कामदेव, जो सबको पीड़ित करता है, उसका भी धिक्कार हो। इस प्रकार से राजा सब चीजों का धिक्कार करते हैं। हाँ, तो ऐसी योजना है तो फिर कृष्ण बना लेते हैं हमारे लिए, और वो हमारे लिए टफ है। लेकिन कभी भी व्यक्ति को नहीं लग रही महसूस होना चाहिए, कई बार हम निरासक्त हो जाते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। हाँ, कितना बड़ा वैरागी हूँ मैं, सब में सबसे ज्यादा वैरागी कौन हो? मैं हूँ। प्रभुपाद के एक शिष्य थे कीर्तनानंद, दीक्षा लेने से पहले उनका नाम कित था। तो 1966 में इस नए नए जुड़े थे और प्रभुपाद के रूप में गए। प्रभुपाद को कहते स्वामी जी मैं अभी सब कुछ त्याग देना चाहता हूं और आपके साथ रहना चाहता हूं कृष्ण की सेवा में। प्रभुपाद ने कहा ये क्या हो गया ऐसा, इतना बड़ा, जिसको लगता है कि तुम ही बड़ा त्यागी हो। प्रभुपाद कहते अरे हाँ तुम क्या चीज है तुम्हारे पास जो तुम त्यागने की बात करते हो? ये शरीर जो है वो भी तुम्हारा नहीं है, माता पिता से 100 साल के लिए खरीद के लेके आए हो। माता पिता ने जन्म दिया ना कि बॉडी को, और वो कितने साल के लिए? कुछ साल के लिए, वो भी हमारा नहीं है। प्रभुपाद के लिए बुद्धि बल वो भी तुम्हारा नहीं है। कृष्ण ने गीता में बोल दिया हाँ बलम बलवतामसि, जो बल है वो मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ। फिर कोई कहे कि मैं आत्मा हूँ, प्रभुपाद कहते अरे वो आत्मा भी कृष्ण कहते मेरा अंश है, क्या है तुम्हारा त्यागने के लिए? प्रभुपाद डांटते उसे। प्रभुपाद कहते अरे मूर्ख त्यागना है तो एक ही चीज त्याग दो, हाँ कि मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ। हाँ ये जो भावना है उसको त्यागना। वास्तविक वैराग्य क्या है? हमारे हृदय में जो अहंकार का भाव है उसको त्यागना, वो वास्तव में वैराग्य है। इसलिए कुंती महारानी कहते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एदमान मदपमान, कि कहते हैं कि ये जो मद है अहंकार वो फायर की तरह ऐसे जलता रहता है, व्यक्ति को ऐसे फुला देता है। मेरा इतना बड़े कुल में जन्म हुआ है, हाँ मेरा कुल महान है। क्यों महान है बाबा? वो कहते हैं मैंने जन्म लिया है। हाँ किसी ने बोला मेरा भारत महान है, दूसरे ने पूछा तेरा भारत क्यों महान है? कहते मैंने भारत में जन्म लिया इसलिए मेरा भारत क्या है? मान है। कुंती कहती है किस प्रकार से हम आसक्त है, अहंकार है कि मैं उच्च कुल का हूं। जन्म ऐश्वर्य, अपने पास जो धन आदि सुविधा है उससे हम घमंडित हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं, अहंकार से मदनमत हो जाते हैं ऐश्वर्य के कारण। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः, हाँ जो ज्ञान है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतने डिग्री अर्जित की है, उसके कारण घमंड हो जाता है व्यक्ति को, अहंकार। और चौथा है श्री सौंदर्य, मैं इतना सुंदर हूँ या सुंदरी हूँ, जिसके कारण कुंती महारानी कहती है कि ये अहंकार की जो भावना है ये व्यक्ति को अनक्वालिफाइड बना देती है, जिसके द्वारा वो कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करता। इसलिए जो अहंकार का भावना है उसको त्याग देना ही वैराग्य है, बाकी किसी और चीज को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अहंकार का भाव है जो हमें इस संसार में क्या करता है? बांध के रखता है। हाँ तो इस प्रकार से हमें आवश्यकता है इस वैराग्य प्राप्त करने की। तो कोई पूछेगा कि कैसे इस वैराग्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो शास्त्रों में तीन चीजें बताई गई है कि केवल बड़े बड़े वचन बोलने से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। लाल वस्त्र धारण करके सर का मुंडन करके वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता और वो टिकेगा भी नहीं। उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी जो वैराग्य शाश्वत हो सकता है। हाँ, उसके लिए क्या है, एक रस का पान करना पड़ेगा। इस संसार में हम इंद्रिय भोग करना चाहते क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एक प्रकार का रस है, टेस्ट है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं रसवर्जन रसोपेश परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमें हमेशा रस चाहिए। अभी आ रहा है ना गर्मी के दिन, मैंगो सीजन आ रहा है, आम रस, तो हमें हमेशा रस चाहिए भौतिक संसार में। तो ये भौतिक रस हमें फीका लगेगा जब हम आध्यात्मिक रस को अपने जीवन में अधिक से अधिक पिएंगे। और वो तीन जूसेस है, कितने जूसेस है, तीन। यदि वो कोई व्यक्ति तीन जूसेस को पीता है तो निश्चित रूप से वो किसी भी आश्रम, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी स्थान में हो, वो परफेक्ट वैरागी हो सकता है। और सबसे पहला रस है वो क्या है, नामामृत। क्या है, नामामृत। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जो नाम है चैतन्य रस विग्रह, कि जो नाम क्या है, रस का विग्रह है। हाँ, तो नामामृत हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, ये हरि नाम में मैंने सारी शक्तियां डाल दी है, इसको ग्रहण करना। सबसे पहले अधिक से अधिक हरि नाम का गंभीरता से अपने जीवन में आश्रय लेना, हरि नाम को ग्रहण करना, जिसके हजारों उदाहरण है। हाँ, कितना रस पान कर रहे थे हरिदास ठाकुर, भौतिक आकर्षण उनको प्रभावित नहीं कर पाया। कोला वेचर श्रीधर थे जिनके पास कोई धन आने नहीं था, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर उनको कहा कोला वेचा तुम्हें इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। कोला वेचर श्रीधर ने कहा नहीं नहीं क्या मुझे नेड है, एक ही रस इनफ है, आपका जो नाम है उच्चारण कर रहा हूं। और एक है कि आप आते रहो मेरे यहाँ और मेरा दिमाग खाते रहो। हाँ, उनका हमेशा लड़ाई होता था चैतन्य महाप्रभु और कोला वेचर श्रीधर, केले के पत्ते बेचकर अपना जीवन उधर निर्वाह करते थे। एक कुछ आना उनकी कमाई थी और उसमें से 50% गंगा की पूजा में लगा देते थे। एक ही उनके पास धोती थी जिसमें 17 छेद थे, एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक ही बर्तन था, उसी से सब कुछ यूज करते थे, लेकिन निरंतर नाम संकीर्तन करते थे। हाँ, तो नामामृत। और दूसरी चीज है भागवत अमृत। कौन सा अमृत, भागवत अमृत। भागवत क्या है, भगवान और उनके भक्तों के बीच में सेवा का या प्रेम का जो आदान प्रदान है, ऐसे भगवान के जो लीला कथा है वो सब भागवत में स्टोर्ड है। उसका एवरीडे निरंतर प्रतिदिन श्रवण करना, अध्ययन करना, वो कोई व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से हम उसके हृदय में शाश्वत वैराग्य स्थापित हो सकता है। और तीसरी चीज है भक्ति रसामृत। कौन सा अमृत, भक्ति रसामृत। भक्ति रसामृत क्या है, वो है भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा का रस। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी भौतिक योग्यताओं को साइड में रखकर एक निम्न दास की भावना से सेवा करता है, कृष्ण उससे आकृष्ट हो जाते हैं। महाराज प्रताप रुद्र, हाँ, ओडिशा के राजा होने के बावजूद भी जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने स्वयं जगन्नाथ रथ निकालने से पहले क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। हाँ, ये है वैराग्य, अपने भौतिक सारी चीजों को दूर रख के कृष्ण को आनंद देने के लिए निरंतर कार्य करना, चाहे हम किसी वर्ण में हो, आश्रम में हो, या जिस भी किसी कंडीशन में हो, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से वो भौतिक रसों की कामना नहीं करेगा। इसलिए यमुनाचार्य कहते हैं, जब से मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों में निरंतर लगा हुआ है, तब से मेरे हृदय में आध्यात्मिक आनंद के रस ऐसे उमड़ रहे हैं और तब से मैं देख रहा हूं कि भौतिक भोगों का विचार मेरे मन में आता है तो मुझे तुरंत उसमें थूकने की भावना जागृत हो जाती है। इस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना। हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान के चरित्र आदि को सुनना, भगवत कथा को। और महत्वपूर्ण क्या है, भगवान की जो भी सेवा मिलती है एक दास की भावना से कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में धारण करके उस सेवा में लग जाना। हाँ, ये तीन हम चीज करेंगे तो सबसे बड़े वैरागी हैं। बाकी और चीज बाहरी रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वैराग्य का सबसे बड़ा श्लोक कौन सा है, शास्त्र कहते हैं वैराग्य का एक ही सबसे बड़ा श्लोक है, त्रिणादपि सुने चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, अपने आपको तृण से भी नीचे, तृणाद आपि नीचे न, नीचे जाने के लिए बोला है, तृण से भी अधिक निम्न समझते हुए दूसरों को सदा ही मान देकर अपने स्वयं को मान की अपेक्षा ना रखते हुए व्यक्ति को सारी स्थितियों को सहन करके क्या करना चाहिए, निरंतर हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए। या जो व्यक्ति इस भावना में रहेगा वो व्यक्ति निरंतर हरिनाम का उच्चारण कर सकता है, और जिसकी जीवा में वास्तव में निरंतर हरिनाम गुंज रहा है वही व्यक्ति सर्वोच्च वैरागी है, सबसे बड़ा अनासक्त व्यक्ति है। इसलिए यह हम पूर्ण विराम देते हैं कि हमने समझा कि वैराग्य क्या है, क्यों हमें वैराग्य धारण करना चाहिए और कैसे वैराग्य का भाव हमारे हृदय में ला सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे। मैंने ज्यादा समय ले लिया आपका, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न वगैरह हो या समीक्षा, अदरवाइज आगे क्या है, संन्यास और वैराग्य में क्या अंतर है। संन्यास का मतलब है कि सब कुछ त्याग करना कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो वैराग्य संन्यास आश्रम का एक प्रमुख लक्षण है, उसमें कुछ अंतर नहीं है, एक उसका लक्षण है। लेकिन संन्यास आश्रम तभी परिपूर्ण है, संन्यास का मतलब है सम्यक रूप से न्यास, न्यास मतलब त्याग देना। किसके लिए त्याग देना, कृष्ण के लिए और दूसरे जीवों के कल्याण के लिए। तो जब ये ऐसा कोई करता है तो वही उसके जीवन में वैराग्य है, और सन्यासी के लिए ये प्रमुख लक्षण है उसका, विरक्ति का भाव। ठीक है, हरे कृष्ण।
Gracias.